नारायण 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 राम 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 बराबरिंदम वरम ब्रह्मी सौंदर्य सास्तु वंदी नंदा हो प्रपन्न पारिजाताय कुसुमेतीगुणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामूले नमः वसुदेवं देवं कंसचाणूर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितवरान् नवदीपराधात् पीताम्बरारुणवेन्दवराधयोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपाधरिन्दनेत्रा कृष्णात्मपि सत्मामे हरि ओं कृष्णात्मने सत्संग और मंत्र लाभ मंत्र राज का जप करने से किससे बोध जल्दी होता है? जल्दी बोध होता है लगन से। भीतर में चाहना हो कि मेरे को बोध हो, चाहना मात्र से होता है। चाहना तेज नहीं हो तो इन करने से धीरे धीरे होता है। इसमें क्रिया की प्रधानता नहीं है, असली जिज्ञासा की प्रधानता है। मैंने बहुत बार कहा है, फिर कहता हूं, आप ध्यान दें, परमात्म तत्व की प्राप्ति में क्रिया और पदार्थों की नहीं चलती है। प्रकृति जन्य पदार्थों में क्रिया और पदार्थ चलता है। पर हम किस मंत्र का जप करें, किस विधि से करें, कैसे करें, ऐसे अनुष्ठान से तत्व ज्ञान हो जाए, ये बात नहीं है। क्रियाओं से प्रकृति के राज्य में काम होता है। प्रकृति परमात्मा के तो यहाँ सच्ची खुद की आपकी लगन हो, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर से जो क्रिया होती है, इससे संसार के काम होते हैं। क्योंकि संसार के ही अंग शरीर मन बुद्धि इंद्रियां है, तो संसार में ये काम करेंगे। परमात्म तत्व का बोध किस मंत्र से होता है और सत्संग से होता है, तो सत्संग से बातें होती है, परंतु असली बोध की इच्छा होने से होता है। नहीं तो संग संग करते रहो, सुनते रहो, इस तत्व बोध साधारण बातों में हो जाएगा। बातें करने में पढ़ाई से, सत्संग करने से बातें आ जाती है, बातें कहनी आ जाती है। खूब बातें कह सकते हैं, पुस्तक लिख सकते हैं, परंतु बोध हो जाए ये हमारे विश्वास नहीं है। दूसरी बात कहते हैं कि राम जन्मभूमि के भी संतों की कृपा से आदेश होता है, कृपया राम भक्तों, राम भक्तों के जिसे निर्देश देने की कृपा करें। राम भक्तों भी हृदय से चाहे, ये भी हृदय से चाहना हो तो होता है। आपका कहना है कि सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही होता है। अभी कुछ लोगों का यह कहना है कि जब प्रकृति के जड़ होने से प्रकृति द्वारा कैसे क्रिया होती है, यदि आप उचित समझें तो इसमें स्पष्ट समझाने की कृपा करें। मैं ऐसा कहता ही नहीं कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती है। मैं कहता हूं, किस समय में कहता हूं, क्रिया सब करोगे प्रकृति के द्वारा ही करोगे। ज्ञानी करेगा तो ही इसमें प्रकृति सस्या प्रकृति सरिषम से क्रिया करे तो प्रकृति अनुसार ही करता है। मन प्रकृति के द्वारा होती बात ठीक है, ज्ञान मार्ग में है ये, ज्ञान मार्ग में अपने को कर्ता नहीं मानता तो ज्ञान के द्वारा प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। अब प्रकृति के द्वारा क्रिया क्या होती है, जैसे भोजन करते हो तो आप अपनी रुचि से करते हो और अपने स्वयं करते हो, प्रकृति द्वारा पाचन होता है, भोजन पकता है पचता है वो प्रकृति के द्वारा पचता है। जैसे संसारिक क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है, परंतु आपके द्वारा शुभ और अशुभ काम आपके खुद के द्वारा होता है, दंड आपको भोगना पड़ेगा, प्रकृति करने से कुछ काम नहीं करेगा, तिल जितना ही खूब ध्यान दें आप, प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, प्रकृति से आप करोगे मन आपकी नियत जैसी होगी उसके अनुसार कर्म होंगे और कर्म के अनुसार फल होगा, वो भोगना पड़ेगा। मतलब ईश्वर कराता है तो भोगना पड़ेगा, प्रकृति कराती है तो भोगना पड़ता है, राग द्वेष पूर्व करे तो भोगना पड़ता है, वो आपको ही करना है, आपको ही भोगना है। जहाँ प्रकृति द्वारा संपूर्ण क्रिया होती है वहाँ अपने में करने का किंचित मात्र भी लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता। जैसे बच्चा बढ़ता है, बड़ा हो गया, आप इतने बड़े हो गए, ये प्रकृति के द्वारा हो गए, कहीं अपने मर्जी से हुए। ऐसी जो स्वतः क्रिया होती है स्वाभाविक, वृक्ष बढ़ते हैं, हवा चलती है, घाम चलता है, कभी जाड़ा बढ़ता है, कभी हवा चलती है, ये सब प्रकृति के द्वारा होता है। तो प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है उसमें पाप पुण्य नहीं होता। बच्चा जवान हो जाता है तो कोई पाप लगता है कद, उसको पुण्य होता है, जवान हो गया इतना पुण्य हो गया, इसको इतना पाप लग गया, बुखार आता है तो उसको पाप लग गया, कुपथ करते हैं पाप लगेगा जरूर, वो अपनी मर्जी से करते हो। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के द्वारा होती है, आप उसमें कर्ता बन जाते हो, उसमें आपको फल भोगना पड़ता है। सब प्रकृति के द्वारा करते हो तो हम फल क्यों भोगे, प्रकृति भोगो, ईश्वर कराते ईश्वर भोगो, हम क्यों भोगे। तो प्रकृति द्वारा कैसे क्रिया होती है, जैसे वृक्ष बढ़ते हैं, जैसे आप बड़े छोटे हो गए बूढ़े हो गए, ये प्रकृति के द्वारा हो गए, कहीं अपने विचार से हुए, मैं बूढ़ा हो जाऊं उसके लिए ये उद्योग किया जाए, ऐसा परिश्रम किया। बच्चा जवान हो जाए तो वो परिश्रम करके जवान होता है, कहीं इतना इतना उद्योग करूं मैं जवान हो जाऊं, कैसे हो जाएगा, कौन प्रकृति के द्वारा होगा। तो क्रियाएं सब प्रकृति के द्वारा होती है, पर आप कर्ता बनते करते हैं वो प्रकृति के द्वारा होने पर भी फल आपको भोगना पड़ेगा। इस प्रकाश में सब क्रियाएं होती है, चाहे वेद पढ़ो और चाहे हरण को मारो गोली चलाओ, ये बिना प्रकाश के नहीं होता, परंतु वेद पढ़ने का पुण्य आपको होगा, सूर्य को नहीं होगा। जानवरों के मारने का पाप आपको लगेगा, सूर्य को नहीं लगेगा, होगा सब सूर्य क्रिया, सूर्य की प्रकाश शक्ति सब उसमें, बिना प्रकाश कैसे होगा। ऐसे प्रकृति द्वारा क्रिया होती है और परमात्मा द्वारा प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है। प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, ज्ञान परमात्मा के द्वारा होता है, परंतु फल भोग आपके द्वारा आपको होगा। ये बात सीधी सर बात को प्रकृति के द्वारा होता है ये मैंने कहा है, तो प्रकृति और पुरुष का जहां विवेचन है वहाँ पुरुष के द्वारा न होकर प्रकृति के द्वारा क्रियाएं होती है। आप कोई काम करे को शरीर के द्वारा ही होगा, बिना शरीर के कैसे होगा बताओ, वाणी के द्वारा होगा, बिना वाणी के कैसे होगा, मन के द्वारा होगा, बिना मन के कैसे होगा। शरीर वांग मनो यत कर्म प्रारब्ध देना, शरीर वाणी मन के द्वारा जो कुछ कर्म आरंभ करता है, ये पांच उसमें हेतु होते हैं, अधिष्ठान कर्ता कर्ण प्रतिष्ठा दैव से पंचम, वो चाहे न्याय हो चाहे विपरीत हो, पांच हेतु होते हैं। पर क्रिया होती है शरीर वाणी और मन से, ये बात है। तो वो अपने करने से होती है और उसका फल अपने भोगना पड़ता है। प्रकृति पुरुष का जहाँ विवेचन किया और ज्ञान मार्ग में चलते हैं और प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर देते हैं तो वो क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है, तो उनको कोई लेप नहीं होता, उनको कोई फल भोग नहीं पड़ता। न करो थी न लिप्त थे, न करता है न लिप्त होता है। जैसे न अहंक तो भाव बुद्धि जैसे न लिप्त थे, अहंक तो भाव नहीं, मैं करता हूँ ये भाव है ही नहीं, बुद्धि में लेप है ही नहीं, किसी के साथ आसक्ति नहीं है, लेप नहीं है। तो सब लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा अभी ही परमात्मा अविनाशी है। शरीर स्थूल बांधते न करोते, स्वयं आत्मा शुद्ध सही मसित होता है, न करता है न लिप्त होता है। तो ये प्रकृति पुरुष के विवेचन की बात है, दोनों के जानने की बात है, करने की बात नहीं है। करने की बात कवि योग में होती है, भक्ति योग में, ज्ञान योग में होती है। श्रवण मन इंद्रिया से करोगे तो क्रिया से ही करनी पड़ेगी, मन इंद्रिया से करना पड़ेगा, ये बात है। तो प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, ये बोध हो जाता है तो प्रकृति के द्वारा होती है। अब भी प्रकृति के द्वारा ही होती है, परंतु प्रकृति में आप मिल जाते हैं तो फल आपको भोगना पड़ता है। क्रिया होती प्रकृति के द्वारा, इसमें संदेह है। बहुत ही क्रिया बताई, एक भोजन करना, एक भोजन का परिपाक होना, पचना। इसमें पचने में आपका हाथ नहीं है, इतना भोजन कर दिया, तृप्ति पूर्वक कर दिया, इतना मैंने पचा लिया और पचा लूंगा, ऐसा होता है यार? वो तो परिपाक होता है, वो प्रकृति के द्वारा होता है, वो आपका किया हुआ नहीं होता है। तो होना है वो प्रकृति के द्वारा है, करना है वो स्वयं के द्वारा है। एक करना एक होना दो विचार है, नफा और नुकसान ये होता है। व्यापार आप करते हैं, अगर आपके द्वारा हो तो नुकसान क्यों करें, नफा ही नफा करें, अपना हाथ की बात नहीं है। प्रकार करोगे आप ही व्यापार करोगे, आप ही नफा होगा वो भी व्यापार भी आपके द्वारा होगा, नुकसान होगा वो व्यापार होगा आपके द्वारा, वो करना आपके द्वारा होता है। कर्मण्य वाली का करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, होना आपके हाथ की बात नहीं, उसमें क्यों दुखी हो गया, बहुत अच्छी बात, ये बात है। तो प्रकृति के द्वारा होता है, ये विवेचन है। वैसी आपकी स्थिति हो जाए, बिल्कुल आपको शरीर मन वाणी आदि से अतीत मैं हूँ ये आपको बोध हो जाए, तो वो प्रकृति नहीं रह जाएगा, प्रकृति के साथ लिप्तता हो जाए, कर्तृत्व हो जाएगा, भोगतृत्व हो जाएगा, तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। और कभी तो भोगतृत्व नहीं होगा, इसे नाम तो बुद्धि जैसे लिप्त, तो आपको पाप पुण्य नहीं लगेगा, बिल्कुल प्रकृति के द्वारा होती है। संसार में जैसे क्रिया होती है उसका पाप और पुण्य हमारे को नहीं लगता, ऐसे शरीर के साथ जैसे संसार के साथ आपका संबंध नहीं है, ऐसे संसार शरीर के साथ संबंध आप अनुभव कर लो मेरा संबंध नहीं है, तो फिर प्रकृति केवल प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। तो ये तो बात समझने के लिए कहा है, क्रिया होती है प्रकृति के द्वारा, ऐसे अगर आप निर्दोष नहीं हो सकते, बोध की बात है। ये अब इतने को स्पष्ट समझाओ तो आप क्या नहीं समझे वो पूछो, स्पष्ट करें कौन सा विषय कितना विषय समझ में नहीं आया है वो आप पूछे, स्पष्ट फिर होगा उसमें बोलो। नारायण 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 और आता है तो हमारे समझ में आ जाए, ऐसे को देखो भाई समझ में आ जाए ऐसा कहना मेरे को आता नहीं है, मेरे जैसा समझ में आया है और जैसा मैं कह सकता हूँ उसमें मैं कपट नहीं रखूंगा, कहने में मेरी नीयत खराब नहीं करूंगा, इतना तो मेरे हाथ की बात है। परंतु आपको समझा दूंगा आप समझ, ये मेरे हाथ की बात नहीं है, समझा दो क कैसे समझा रहे। छठे अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसमें पता मंत्रात्मा से मेरा वर्णन करता है, वो युक्त तामा है। छठे अध्याय का अंत में कहा, सातवें अध्याय में आरंभ कहा, सातवें अध्याय के अंत में कहा, बारहवें अध्याय दूसरे में कहा, बारहवें अध्याय के बीसवें में कहा, अन्य भक्ति की बात बताई, ग्यारहवें अध्याय के अंत में बताई। तो भक्ति में क्या है, भगवान का भरोसा रखे, उसी का चिंतन करे और भगवान की आज्ञा का ही पालन करे तो भक्ति हो जाती। फिर वो ज्ञान में जैसे कर्म उसके लागू नहीं होते, ऐसे भगवत भक्त के भी कर्म लागू नहीं होते, वो भी ऐसे ही ऐसे योग में कर्म योग में ही है, उसे लागू नहीं होते। पर भक्ति हो उधर योग हो उधर विवेक हो तब ये बात है, नहीं तो कर्ता भोगता पड़े गए, बातें सीखने से काम नहीं होगा। किसी अंतरात्मा से भजन कैसे हो, जैसे अपने प्यास लगती है तो जल का भजन होता है, कल जल की माला भरते हो पानी पानी पानी, जो भीतर से लगन पूर्व होता है वो भजन होता है। भूख लगती है तो रोटी 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 जपते हो, जबरदस्त। कहीं बच्चे की माँ कहीं चली जाए तो माँ माँ बोल करता है, वो माँ का जप करता है, याद जाती माँ बिना रहा नहीं जाता, प्यास लगती जल बिना रहा नहीं जाता, भूख लगी अन्न बिना रहा नहीं जाता, ऐसे भगवान के बिना रहा न जाए, मीरा बाई का हरी बिना रहो रे रह जाए, भगवान बिना मेरे से रहा नहीं जाता, इसका नाम भजन है। ऐसे जप का नाम भजन है, कीर्तन का नाम भजन है, चिंतन का नाम भजन है, सबका नाम भजन है। भगवान के सन्मुख उद्देश्य भगवान का रखकर किया जाए, सांसारिक काम भी भजन हो जाएगा, झाड़ू जरा भी भगवान का भजन हो जाएगा, उद्देश्य लक्ष्य भगवान है, इसका भगवान का भजन होता है। दुकान में झाड़ू लगाते हैं, रात में बच्ची तक काम करते हैं, वो सब पैसे के लिए होता है, तो पैसे का अर्पण होता है वो, ऐसे भगवान के लिए किया जाए तो भगवान का अर्पण होता है, सबका सब भगवान का भजन हो जाता है। जब आपका लक्ष्य भगवान बन जाते हैं, अब लक्ष्य वो बनाना आपके हाथ है, लक्ष्य तो आप रुपयों का रखो भोगों का रखो, अगर भगवत भक्ति हो जाए हमारे तो समझ में आती नहीं जाए, हाय पैसा भीतर से तृष्णा लगी है पैसों की, और राम 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 करो तो न करने वाला भी पैसा तो ठीक रहेगा, पर भक्ति हो जाए भगवान भी हो जाए ये नहीं होता। लगन आपके किस में है, लगन पैसों में है, तो लगन करने से पैसे नहीं मिलते, पैसे सांसारिकी में क्रिया की पदार्थ की प्रधानता है, परमात्मा में केवल भाव की बोध की प्रधानता है। आपका भाव बढ़ जाए तो भगवान बन जाए, भावज्ञा ही क्रिया की प्रधानता इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है। भाई बहनों ने मान रखा ये बात, मैंने 20-50 लोगों को 100 दफे कहा तो कहा होगा, मैंने बहुत कहा है, परंतु भाई लोग वो इस चीज अपने वैसे ही चलते हैं, भाव और बोध की तरफ दृष्टि नहीं, क्रिया पर क्या करें, बोलो क्या करें, ऐसा भजन हो जाए क्या करें, करें नहीं हो सकता भाई, प्यास लगे प्यास कैसे लगे, क्या करें बताओ, प्यास कैसे लगे, भूख कैसे लगे कर बताओ कैसे लगे, ऐसे भाई न खाने से भूख लगती है, ऐसे संसार के भोग न भोगने से भगवान की भूख लगती है, संसार के भोग भोगते रहो, संसार के पदार्थ संग्रह करते रहो, उसमें सुख लेते रहो और भगवान की भूख लग जाए, असंभव बात है, नहीं लगेगी, केवल भगवान के परायण हो जाए, आज मृत्यु हो जाए तो वह स्वीकार है, परंतु भगवान के न मिलना हमें स्वीकार नहीं, ऐसी लगन लग जाए, प्राण निकलने लगे भगवान के बिना, जान कर नहीं, आपघात नहीं करना है, भगवान की लगन लगे मन में, ऐसी चटपटी लगे मन में लागी चटपटी, कब न रुकूं घर श्याम, नारायण भूल और सभी खान पान भुष्टाम, नारायण है लगन में ये 500 सुहाग, उसी लगन में पांच स्वास्थ्य यदि विषय हो लज्जा हंसी जगत अप्रीत बहुपात ये स्वास्थ्य नहीं, इसमें मन लगता नहीं। तो भगवान की लगन लगती उसकी पहचान बताई, ये पांच चीजें सुहाते नहीं, विषय भोग निद्रा निद्रा सुहाते नहीं, हंसी दिलगी सुहाते नहीं, जगत की प्रीति सुहाते नहीं, बहुत बातें भी करना सुहाता नहीं। भगवान की लगन जिसके लगी है, लगन लगी घनश्याम की उसी लगन लगी, उस लगन से परमात्मा मिलता है, ये बात है। अब वो लगन कैसे लगा, दूसरी लगनों का त्याग कर देने से, रुपये पैसे की कुटुंब की शरीर के निरोग होने की मान सत्कार बढ़ाई होने की हमारा यश प्रतिष्ठा रहे हमारी इज्जत प्रतिष्ठा रहे, ये जब तक चाहना है तब तक भगवान का मेहनत तो दूर रहा, भजन भी शुरू नहीं होता, असली भजन भी शुरू नहीं होता, नकली होता है। मन में संसार भरा हुआ है कैसे होगा, इसलिए अदान कीड़ी ने नमक की दरी को पकड़ रखा है, अब मिर्ची का स्वाद कैसे आएगा, ऐसे भीतर संसार को महत्व दिया हुआ है, वो परमात्मा का भजन न करने की अपेक्षा करना अच्छा है, परंतु भजन हो जाए भगवान मिल जाए अंतरात्मा से भगवान भजन हो जाए ये नहीं होगा। अंतरात्मा भगवान के बिना व्याकुल हो जाए, भगवान के बिना भेद मिले ना अन्न भावे ना जल भावे ना नींद आवे ना बात सुहावे ना जीना भार हो जाए अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्वतः लगन लगेगी उसमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, वो है भजन। योगी नाम भी सर्वेशा मदगति अंतरात्मा, अंतरात्मा से भगवान का भजन हो, श्रद्धावन भय श्रद्धा प्रेम पूर्ण वो युक्ततम है, सर्व योगियों में श्रेष्ठ है, मैया वैश्य मनो ये मांग नित्य युक्ता पर श्रद्धया परियोग युक्ततम माता, वे युक्ततम है, वे श्रेष्ठ योगी है। अंतरात्मा में बिना भगवान के रहा नहीं जाता, भगवान के बिना क्षण भर भी मन नहीं लगता, कोई चीज सुहाती नहीं, लाखों करोड़ रुपया दो तो सुहाता नहीं भगवान के बिना, ऐसी बात हो जाए एक ही लगन लग जाए, बस एक ही धारणा हो जाए भगवान की तरफ मन चले, उसके बिना रहा नहीं जाता, ऐसी लगन है उसका नाम भजन है। प्यासे के जल का भजन होता है, भूखे के अन्न का भजन होता है, बालक की माँ का भजन होता है, माँ 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 मारा नहीं जाता है, माँ के लिए रोता है तो पूछता नहीं है पंडित जी से कि महाराज मैं किस वक्त में रोना शुरू करूं जिसमें माँ मिल जाए, वो मूर्त नहीं पूछता है, और कितना रोने से मिले ये नहीं पूछता है, कितनी देर रोने से मिले उसको माँ लगा दे रहा था उसको हो जाए, ऐसे भगवान बिना रहा न जाए उसका नाम असली भजन है। आप जब करें कीर्तन करें कुछ न करें पर भजन में लगन ऐसी लग जाए उसके बिना रहा नहीं जाता, वो भजन होता है। तो छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में ये बात बताई, योगी नाम सर्वेशम, जितने योगी है उन योगियों में अंतरात्मा से भगवान में लगा है उसको और सुहाती नहीं, बात नहीं सुहाती, समय बीतता है वो मौत आ रही है जैसे दूर रहता है, बुरा लगता है, कोई चीज सुहाती नहीं, भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, बात सुहाती नहीं, चित्त लगता नहीं, आदि पर डोलता रहता है, नींद आती नहीं, उस लगन के अगर नींद आती नहीं ऐसी भीतर से लगन केवल भगवान की लग जाए तो ये होता है भजन, वो है भजन अंतरात्मा, वो श्रेष्ठ मान्य है। अंतरात्मा में कैसे भजन, तो भूख लगे जब अन्न को कैसे भजते हो, प्यास लगे तो जल को कैसे भजते हो, अजात पक्षा यो मातरंग का छोटे छोटे पक्षी बालक घोंसले में बैठे हैं, पंख पूरी आ ही रही, माँ माँ करके यूँ आए, माँ से सांस देती यूँ जाते जाती, बस वो जैसे अपनी माँ को याद करते हैं, जैसे छोटा बछड़ा सिवाय माँ के दूध के खास पानी कुछ नहीं लेता, देर हो जाती है माँ माँ सामो करता है, गौ आती है तब दूध पीता है थोड़ा भी, केवल माँ की याद रहती है और कोई चीज याद नहीं, ऐसे केवल भगवान की याद रहे, याद करना नहीं पड़ता है, वहाँ भूल सकते नहीं, आप से आप भगवान की याद आती है, वो भजन होता है भाई, अंतरात्मा भजन वो होता है। अब वो कैसे हो कि आपका उद्देश्य पहले बढ़ जाए और दूसरों से रस लेना, भोगों से रुपयों से मान से बढ़ाई से आदर से सोने से जो सुख लेते हो ये लेना बंद हो जाए तब होता है, ये लेते रहोगे तब तक अनन्य भजन नहीं होगा, अंतरात्मा भजन नहीं होगा, जो सुख लेते रहो भजन करते रहो, ठीक है। भजन करने वालों में ऐसे आदमी को मैंने देखा है कि आज रविवार है तो आज भजन छोड़ दिया, छुट्टी हो गया, आज भजन नहीं करेंगे, ये भजन के लक्षण नहीं है, ये ड्यूटी बजाने के लक्षण है, भजन नहीं, भजन की छुट्टी होती कागज में छुट्टी रखता हूँ रविवार के दिन, ये हमारे तो समझ में नहीं आता, ये कोई भजन होता है क्या, ये आफत है नाम जपना, एक दिन छुट्टी हो जैसे आराम से रहेंगे, ये आफत लगी इतनी माला जपना इतना नाम जपना, अब आफत किससे हो रोजे ना की, उसके द्वारा भजन नहीं होता, स्वांग होता है, ये बात है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, हमारा जीवन भगवानमय हो जाए, भगवान प्यारे लगे हैं तो इसी इच्छा करो मन में कि हमारा जीवन भगवानमय हो, भगवान ही प्यारे लगे, कोई प्यारा ना लगे, ऐसी प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो, उसकी कृपा से हो सकता है, परंतु आप भोगों को छोड़ो संग्रह को छोड़ो, सब है रुपये मेरे पास इतना हो जाए और आ जाए, ऐसे भोग भोग सुख से रहे आराम से रहे मान बढ़ाई हमारी रहे, तो नहीं हो। अब इसमें शंका तो बोलो, जिस भाई ने लिखा है ना उसी जो शंका रही बोलो, आप इनको समझ करके बोलोगे तो कोई कोई बात निकलेगी, जो पूजा का जवाब दिया है मैंने, भजन किसका नाम है, अंतरात्मा से भीतर से रहा न जाए, बिना भगवान के कोई चीज सुहावे नहीं, एक तू ही मन भाव है, एक तुम्ही आज ही पर मन बोलता रहता है, कैसे भगवान कहो जी कैसे है मिले सामरी हो यारी मने रे सामरी हो, कहो जी कैसे है मिले भगवान कैसे मिले, उनकी ओलू आती है, उनकी अवशेष आती है, उनकी याद आती है, याद आती है, याद वो भूली नहीं जाती, जैसे गोपिकाएं सब कहा यादो हने वह नरे मसलो पले प्रेंगनाथी तो माँ जना दो गायन से मनो सुकंठ धन्या उम चित जाना, ऐसे चित्त पर भगवान चले जाते हैं, सब काम घर का करते हुए भी अंतरात्मा भगवान ही भगवान बसते हैं, वो तो काम मशीन की तरह होता है, पर भीतर से सेव केवल भगवान की चाहना है, ये बात हो भाई। अब जो बात शंका रही समझ में नहीं आई पूछो, और आई तो ऐसी बताओ, ऐसी बनाओ अपनी स्थिति, ऐसी बनाओ सज्जनों बात ये भाई असली कहावत है कि आप मरे बिना स्वर्ग कौन जाए, यहां से मरे तो सही जाता है, तो संसार से मरना पड़ता है। जीते ही जी संसार से मर गया, मेरे वास्ते कुटुंबी नहीं, कुटुंबी वास्ते मैं नहीं, मेरे वास्ते रुपया घर नहीं, मेरे वास्ते घर रुपया नहीं, रुपया वास्ते मैं नहीं, इन सबसे मर गया। मरने वाला कभी बात पूछता है आकर के कभी क्या ढंग है, रुपये कहाँ है, कुटुंब कहाँ है, पूछता है। ऐसे जीते जी ऐसी वृत्ति हो जाए तब ठीक होता है भाई। कहते हैं शास्त्र कहता है कि सुख रसुख सुविच्छा बंधन कारक होती है, भाई किस अवस्था में होती है? अभी के सुख भगवान की इच्छा भी बंधन कारक होती है, भगवान की इच्छा जोरदार करो, संसार की इच्छा छोड़नी है कि भगवान की इच्छा बढ़ाने के लिए, ये बंधन कारक नहीं होती। भगवान की इच्छा बंधन कारक नहीं होती, भगवान की इच्छा तो बंधन तोड़ा देती, खुला देती, सब नष्ट कर देती। यस्य स्मरणात्मेन जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसकी स्मरण आने से याद आए भगवान की, भगवान की याद आवे, जहां भी जाए भगवान की याद आवे, छूटती नहीं। एक अगर स्कंध में आया है त्रिलोक का राज्य मिलता हो तो तुम क्षणिक मात्र भगवान को छोड़ दे, हमारी चाहिए भगवान की याद है, वो नहीं छूटेगी, सारा राज देने से क्या हुआ, लव निवेश आग्रह सब वैष्णव आग्रह, वो भगवान के भक्तों में मुख्य। अब समझ में नहीं आए तो पूछो, शंका है तो पूछो, समझ में नहीं आए तो पूछो, तो ऐसी होनी चाहिए। ऐसी जब तक नहीं हो तब तक संतोष न करो, प्रार्थना करो भगवान से, अपने तरह से पुकारो, कीर्तन करो, जप करो, भक्तों के तरह से पढ़ो, भगवान के तरह से पढ़ो और पुकारो। ऐसी लगन हो जाए, हे नाथ मैं बोलू नहीं, सच्ची लगन हो जाए आपके चरणों में, कलकत्ते में सत्संग होता है, वहां मैंने एक दिन कहा था कि भगवान से कहो कि भक्ति आपके भक्तों को दो, ज्ञान आपके जिज्ञासुओं को दो, बढ़िया बढ़िया बातें आप भक्तों को दो, हमें तो आग लगा दो, आपके बिना आग लग जाए, फिर से जलन पैदा हो जाए, बिना आपके रहा ना जाए, अग्नि तो मेरे को ही लगाओ, पर हो मुर्जे को भी लगाते हैं, वो तो लगाओ कम से कम, ऐसे भगवान से वो अग्नि लग जाए, बिना आपके रहने लगा, तो हम अच्छी बात नहीं मांगते, हम उनके पात्र नहीं है, इस बात को क्या मांग रहे, ना दर्शन मांगते ना प्रेम मांगते, हम जो मांगते हैं अग्नि लगा दो, बस जल लग जाए बिना आपके, हमारा जीवन भार हो जाए, शरीर भी जलने लगे, अंतकरण जलने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मिले भगवान, कैसे मिले, ये आग लगा दो, वो ऐसी प्रार्थना करो भगवान से, तो उसी कृपा से मिलती है, जिस प्रेम से आप मिल जाओ वो प्रेम दो नाथ, वो लगन दो प्रभु, ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ, जैसे बच्चे को कोई लेना हो तो माँ का पल्ला पकड़ के मेरे को दे दे, ठहरेगा ना, मेरे को दे दे, मेरे को दे ही दे, तंग कर देता है, ऐसे भगवान को तंग कर लो, तो मेरे को अपने दे दो, दे ही दो बस, तो भगवान की लाचार हो जाएगा तो हो जाएगा, दूसरी इच्छा छोड़ करके एक सर्व तो हो जाएगा, भगवान से प्रार्थना करो तो हो जाएगा, दूसरी चीजें छोड़ने से होता है, छोरी वही साथ ले जाती है जहां तीर का संबंध तोड़ देती है, तीर का संबंध भी पूरा रहकर साथ ही चल जाए, दिन कैसा होगा, तो यहां से संबंध तोड़ना पड़ेगा। अब बोलो शंका जो बोलो, समझ नहीं आती बोलो, समझ में आती है तैसे करो और प्रार्थना करो, भक्तों के सिर से पढ़ो, भगवान के सिर से पढ़ो, नाम जप करो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो, भगवान से यही मांगो, कैसी अनन्य भक्ति हो जाए, आपके शरणों को भूलू नहीं, ऐसी आप शक्ति हो भक्ति हो। नारायण 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 नारायण
राम। यह प्रवचन परम सद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 19 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।